آداب، خبرنامے کے ساتھ میں کلیم احمد۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں ملیشیا کے اپنے ہم منصب انور ابراہیم سے بات چیت کریں گے۔ بات چیت کے بعد دونوں ممالک کئی سمجھوتوں پر دستخط کریں گے۔ بھارت اور جاپان آج شام نئی دلی میں 2+2 وزارتی مذاکرات کریں گے۔ جموں کشمیر کے اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے نوٹیفیکیشن آج جاری کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کولکاتہ میں ایک ڈاکٹر کی ابروریزی اور قتل کے حالیہ واقعے سے متعلق معاملے کی آج سماعت کرے گا۔ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس ماہ کی 28 تاریخ سے شروع ہونے والے پیرس پیرا اولمپکس کھیلوں کے لیے بھارتی کھلاڑیوں سے بات چیت کی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں ملیشیا کے اپنے ہم منصب داتو سیری انور ابراہیم کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ توقع ہے کہ دونوں فریق بات چیت کے بعد کئی سمجھوتوں پر دستخط کریں گے۔ جناب ابراہیم بھارت کے 3 دن کے سرکاری دورے پر کل نئی دلی پہنچے ہیں۔ جل شکتی اور ریلوے کے مرکزی وزیر مملکت وی سومنا نے ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم کی حیثیت سے یہ ان کا بھارت کا پہلا دورہ ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
دورے پر آئی معزز شخصیت کا آج صبح راشٹرپتی بھون کے احاطے میں باضابطہ استقبال کیا جائے گا۔ وہ مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے راج گھاٹ جائیں گے اور اس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی ملیشیا کے اپنے ہم منصب کے اعزاز میں زہرانے کا اہتمام کریں گے۔ جناب ابراہیم شام میں راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کریں گے۔ بھارت اور ملیشیا کے درمیان مضبوط تاریخی، سماجی اور ثقافتی رشتے ہیں۔ ان باہمی تعلقات کی قریبی شراکت داری کی حیثیت وزیر اعظم مودی کے 2015 میں ملیشیا کے دورے کے دوران اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ دونوں ممالک اگلے سال قریبی شراکت داری کی دوسری دہائی میں داخل ہو جائیں گے۔ مستقبل کے لیے کثیر شعبہ جاتی تعاون کے ایجنڈے کو وضع کیے جانے سے وزیر اعظم انور ابراہیم کا دورہ بھارت اور ملیشیا کے درمیان باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی راہ ہموار کرے گا۔ نئی دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
وزیر اعظم نریندر مودی کل پولینڈ اور یوکرین کے 3 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ کل شام نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں سیکرٹری مغرب تنمے لال نے کہا کہ یہ ایک تاریخی دورہ ہوگا کیونکہ بھارت کے وزیر اعظم 45 برس بعد پولینڈ کا دورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات کے 70 برس مکمل ہو رہے ہیں۔ جناب لال نے کہا کہ وزیر اعظم مودی یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی دعوت پر اس ماہ کی 23 تاریخ کو یوکرین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک تاریخی دورہ ہوگا کیونکہ سفارتی تعلقات قائم ہونے کے 30 سے زیادہ برس کے بعد بھارتی وزیر اعظم پہلی مرتبہ یوکرین جا رہے ہیں۔ بھارت اور جاپان آج شام نئی دلی میں 2+2 وزارتی مذاکرات کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل نئی دلی میں جاپان کی وزیر خارجہ یوکو کامیکاوا سے اور وزیر دفاع منورو کیہارا سے ملاقات کی جو بھارت کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے باہمی دفاعی اور سیکیورٹی رشتوں کا جائزہ لیا۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور جاپان کے درمیان شراکت داری بھارت بحر الکاہل خطے اور اس سے آگے تک امن اور خوشحالی کو فروغ دے رہی ہے۔ جاپان کے وزرا کل نئی دلی پہنچے تھے۔ اپنے نئی دلی دورے سے پہلے جاپان کی وزیر خارجہ کامیکاوا نے کہا کہ بھارت کی کلیدی اہمیت پہلے اتنی زیادہ نہیں تھی جو اب ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت بحر ہند سمندر کے وسط میں واقع ہے جو ایشیا اور افریقہ کو جوڑ رہا ہے اور وہ ایک آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل کی تکمیل میں ایک اہم شراکت دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2+2 میٹنگ میں دونوں وزراء قانون کی حکمرانی پر مبنی ایک آزاد اور کھلے بین الاقوامی نظام کو برقرار رکھنے اور اسے مستحکم رکھنے کے لیے کلیدی ماحول پر اپنے خیالات مشترک کریں گے۔ انہوں نے دفاعی اور سلامتی کے شعبے میں تعاون کو مزید مستحکم کرنے کی بھی تصدیق کی۔ قانون اور انصاف کے وزیر مملکت آزادانہ چارج ارجن رام میگھوال نے لیٹرل انٹری یعنی سرکار کی روایتی سول سروسز سے باہر مخصوص صلاحیت اور ہنر کے حامل اہلکاروں کو براہ راست مقرر کیے جانے کے معاملے پر کانگریس کی تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے اپنی حکومت کے دوران اس کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ سمیت مختلف عہدیدار لیٹرل انٹری سے ہی حکومت میں شامل ہوئے تھے۔ जनाब मेघवाल ने कहा कि वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने इस निजाम को तब्दील किया और अब मखसूस सलाहियत और हुनर के हामिल अहलकारों को बराह रास्त मुकर्रर करने के लिए एक मुनज्जम तरीका वजा किया है।
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी तो लेटरल एंट्री के ही पार्ट थे 1976 में, सीधा आपने फाइनेंस सेक्रेटरी कैसे बनाए? तो लेटरल एंट्री तो आपने शुरू की थी, मोदी जी ने व्यवस्थित की है। 2005 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना, उसकी रिपोर्टें हैं, आपने किए ही नहीं। मोदी जी ने इसको व्यवस्थित किया, उन्होंने कहा भी ऐसे नहीं, यूपीएससी को दे दो, जो रूल्स बनाएगी तरीके से लेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट की पोस्टें हैं।
वजीर आजम नरेन्द्र मोदी इस माह की 25 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात के प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 113वीं किस्त होगी। अवाम टोल फ्री नम्बर 1800117800 के जरिए अपने ख्यालात और तजावीज पेश कर सकते हैं। लोग नरेन्द्र मोदी ऐप या माई गव ओपन फोरम के जरिए अपनी मालूमात ऑनलाइन भी मुश्तरक कर सकते हैं। आइंदा किस्त की तमाम मशवरे या तजावीज इस माह की 23 तारीख तक कबूल किए जाएंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कानून साज असेंबली के इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। इस मरहले के तहत अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा जिले में वोट डाले जाएंगे। इस मरहले के लिए कागजात नामजदगी इस महीने की 27 तारीख तक दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि कागजात की जांच पड़ताल अगले रोज होगी। 30 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और वोटिंग 18 सितंबर को होगी। मरकज के जेर इंतजाम इलाके में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए हतमी वोटर फहरिस्तें आज जारी किए जाने की उम्मीद है। तवक्को है कि तकरीबन 90 लाख अफराद वोट देने के मजाज होंगे। जम्मू कश्मीर में असेंबली सीटों की तादाद 83 से बढ़कर 90 हो गई है और हदबंदी के अमल के बाद कई असेंबली हलकों की सरहदों में भी तब्दीली आई है। 90 असेंबली हलकों में से 74 जनरल हैं, जबकि 7 दर्जे फहरिस्त जातों और 9 दर्जे फहरिस्त कबाइल के उम्मीदवारों के लिए रिजर्व हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में एक रेजिडेंट डॉक्टर की आबरूरेजी और कत्ल के हालिया वाकये से मुतालिक मामले की आज समाअत करेगा। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल 3 जजों की बेंच मगरबी बंगाल हुकूमत की जानिब से चलाए जा रहे आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की एक डॉक्टर की आबरूरेजी और कत्ल के मामले की समाअत करेगी। अदालत आलिया ने इस मामले में असखुद नोटिस लिया है, जिसने पूरे मुल्क और तिब्बी हलके को शदीद सदमा पहुंचाया है। कलकत्ता हाईकोर्ट पहले ही इस मामले की समाअत कर रहा है, जिसने इस मामले की तहकीकात मरकजी जांच ब्यूरो को सौंपने का हुक्म दिया था। हलाक हुए डॉक्टर के वालिदैन और कुछ दीगर अफराद के पुलिस तहकीकात से नाखुश होने के बाद उनकी जानिब से दरख्वास्त दाखिल की गई थी और यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट आज भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की रहनुमा के कविता की जमानत की उस दरख्वास्त पर समाअत करेगा, जो उन्होंने मुबैना दिल्ली शराब पॉलिसी घपले से वाबस्ता बदउनवानी और काले धन को जायज बनाने के मामलों में दाखिल की थी। पिछले हफ्ते अदालत आलिया ने के कविता की अर्जदाश्त पर गौर करने से इतफाक किया था और सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से अपने जवाब दाखिल करने को कहा था। बीआरएस के सरबराह और तेलंगाना के साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को गुज़िश्ता महीने की पहली तारीख को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। मिजोरम कानून साज असेंबली का 2 रोजा मानसून इजलास आज शुरू होगा। इजलास के दौरान 5 बिल पेश किए जाएंगे। असेंबली कपूरचंद ठाकुरी को खराज अकीदत पेश करेगी, जो रियासत में गोरखा तबके के पहले और वाहिद नामजद रुकन थे। ठाकुरी 1972 में रियासती कानून साज असेंबली के लिए नामजद किए गए पहले 3 अराकीन में शामिल थे, जब मिजोरम को मरकज के जेर इंतजाम इलाका बनने के बाद पहली असेंबली की हैसियत हासिल हुई। ठाकुरी का इंतकाल 15 जुलाई को काठमांडू में हुआ था। 1 लाख से ज्यादा लोग इतवार को टोरंटो के नाथन फिलिप्स स्क्वायर में भारत की यौम आजादी की परेड में शामिल हुए, जबकि कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो, ओंटेरियो के वजीर आजम डॉग फोर्ड उजरा और मेरो ने 10,80,000 पर मुश्तमिल भारत कनेडियाई बिरादरी को मुबारकबाद दी। भारतीय निजात विफाकी वजीर अनीता आनंद, जो ट्रूडो की काबीना में ट्रीजरी बोर्ड की सदर हैं, और ओंटेरियो असेंबली के मेंबर दीपक आनंद भी इस मौके पर मौजूद थे, जबकि भारतीय कौंसिल जनरल सिद्धार्थनाथ ने भारतीय परचम फहराया। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेन्यामिन नेतन्याहू ने यरूशलम में अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन के साथ 3 घंटे की मीटिंग के बाद यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक अमरीकी तजवीज से इत्तफाक कर लिया है। एक बयान में नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक अमरीका की मौजूदा तजवीज के तहत इसराइल के अज़्म को दोहराया है, जिसमें इसराइल की सलामती की जरूरियात का ख्याल रखा गया है। हमास ने अपने बयान में इल्जाम लगाया है कि नेतन्याहू ने गजा में जंग को तूल देने और मुजाकरात नाकाम बनाने के लिए नई शराइत और मुतालबात रखे हैं। ग्रुप ने मजीद दावा किया कि अमरीका की हिमायत वाला तजवीज का नया मतन इसराइल के मुतालबात से हमाहंग है। वज़ीर आज़म नरेन्द्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक्स के लिए भारतीय दस्ते के साथ बातचीत की, जो इस माह की 28 तारीख को शुरू होगा। उन्होंने ये बातचीत कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की। बातचीत के दौरान जनाब मोदी ने कहा कि भारतीय एथलीट्स भारत के परचम बरदारों की हैसियत से पेरिस जा रहे हैं।
कोई भी खिलाड़ी हो, उसकी बुनियाद हौसलों से बनती है। खिलाड़ी अनुशासन की शक्ति से आगे बढ़ता है। उसकी सफलता उसके आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण की गवाह होती है। लेकिन जब बात पैरा एथलीट्स की होती है, तो ये सच्चाई और ये चुनौती कई गुना बड़ी हो जाती है।
जनाब मोदी ने कहा कि 140 करोड़ हमवतनों की दुआएं एथलीट्स के साथ हैं। उन्होंने कहा कि ये सफर उनकी जिंदगी और करियर का एक इंतहाई अहम सफर होगा। खेलों के वजीर मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत पैरालंपिक्स में शिरकत के लिए अपना सबसे बड़ा दस्ता भेज रहा है और पेरिस पैरालंपिक्स में 84 बासलाहियत एथलीट्स भारत की नुमाइंदगी करेंगे।
मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इनमें से लगभग 50% एथलीट पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों में भाग ले रहे हैं। हमारे लिए यह भी गर्व का विषय है कि भारतीय खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में 19 पदक हासिल किए थे। इसी तरह पेरिस में भी ये एथलीट देश का नाम बढ़ाएंगे।
जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आज सुबह सवेरे 4.9 की शिद्दत का जलजला महसूस किया गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जलजले की पैमाइश करने वाले नेशनल सेंटर ने जलजले की तफसीलात फराहम की हैं। जलजले से किसी के हलाक या नुकसान की फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं है। हुक्काम किसी मजीद पेशरफ्त के लिए सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज 4 रोज के दौरान मुल्क के शुमाल मगरिब, मगरबी मशरकी और वस्ती हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। जनूबी जजीरानुमा हिस्से में भी कल तक शदीद बारिश का इम्कान है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
शुक्रिया कली। दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा हिन्दुस्तान एक्सप्रेस ने सरकारी मिल्कियत वाले बैंकों की कारकर्दगी का जायजा लिये जाने से मुतालिक खबर को नुमाया तौर पर शाये किया है। अखबार की सुर्खी है, वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों को मशवरा दिया है कि वो मौसर कस्टमर सर्विस की फराहमी के लिए अपने सारिफिन के साथ बेहतर ताल्लुकात रखें। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेन्द्र मोदी के दौरे यूक्रेन और पोलैंड की खबर को नुमाया तौर पर शाये किया है, जिसमें कहा गया है कि भारत यूक्रेन में तनाजे का पुरमन हल तलाश करने में ताउन करने के लिए तैयार है। अखबार ने जम्मू कश्मीर में हुए दहशतगर्दाना हमले की खबर को भी अहमियत के साथ शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, उधमपुर में CRPF के काफिले पर हमला, एक जवान शहीद। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने RGKR मेडिकल कॉलेज में इस्मत दरी और कत्ल मामले में खातून रेजिडेंट डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के हवाले से लिखा है कि जूनियर डॉक्टर के जिस्म पर जख्मों के कई निशानात मिले।
खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली में मलेशिया के अपने हमनसब अनवर इब्राहिम से बातचीत करेंगे। बातचीत के बाद दोनों ममालिक कई समझौतों पर दस्तखत करेंगे। भारत और जापान आज शाम नई दिल्ली में 2+2 वजारती मुजाकरात करेंगे। जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में एक डॉक्टर की आबरूरेजी और कत्ल के हालिया वाकये से मुतालिक मामले की आज समाअत करेगा। और वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने इस माह की 28 तारीख से शुरू होने वाले पेरिस पैरालंपिक्स खेलों के लिए भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत की। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।